नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। कहा, पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता विश्व के लिए महत्वपूर्ण। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले विधानसभा सत्र में CAG रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आज तेज बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में मुख्य संभाषण भूटान के प्रधानमंत्री दासो छरिंग तोबगे का होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्म, लोकनीति, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां अपनी सफलता की गाथा साझा करेंगी। प्रधानमंत्री आज विज्ञान भवन में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे। ये इस सम्मेलन का 98वां संस्करण होगा। सरकार ने हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। 3 दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के सत्र होंगे और मराठी साहित्य की सर्वकालिक प्रासंगिकता, भाषा के संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों के डिजिटीकरण पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
71 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 से 23 तक 3 दिन के लिए आयोजित यह मराठी साहित्य सम्मेलन एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में 5,000 से अधिक साहित्य प्रेमियों के शामिल होने की उम्मीद है, जो विश्व स्तर पर मराठी संस्कृति और साहित्य का जश्न मनाएंगे। प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर तारा भवाड़कर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी और 128 साल के इतिहास में सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली 6ठी महिला बनेगी। तालकटोरा स्टेडियम स्थल का अस्थायी रूप से नाम बदलकर मराठी साहित्य परंपराओं के प्रतीकात्मक नामों के साथ रखा जाएगा। यह सम्मेलन मराठी साहित्य की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रमाण है। नरेंद्र विस्पुते, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
इस कार्यक्रम में पुणे से दिल्ली तक एक प्रतीकात्मक साहित्यिक ट्रेन यात्रा भी शामिल होगी।
इस कार्यक्रम में पुणे से दिल्ली तक एक प्रतीकात्मक साहित्यिक ट्रेन यात्रा भी शामिल होगी, जिसमें साहित्य की एकीकृत भावना दिखाने के लिए 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें 2600 से अधिक कविता प्रस्तुतिकरण, 50 पुस्तक लॉन्च और 100 पुस्तक स्टॉल शामिल होंगे। यह सम्मेलन मराठी साहित्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति कठिन दौर से गुजर रही है। कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से करने का समर्थक रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई स्वागत योग्य है। श्री जयशंकर ने वैश्विक घाटे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शाम पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद ये बात कही।
आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा की पहली बैठक में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 14 रिपोर्टें पेश की जाएंगी।
कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2027 तक पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। कल नई दिल्ली में एकता उत्सव एक आवाज एक राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यटन से लेकर तकनीक, खेल से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में पूर्वोत्तर के लिए कई रास्ते खोले हैं। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर में 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं और वर्ष 2019 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में 12 शांति समझौते हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विभिन्न देशों के बीच टकराव के कारण सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कल पुणे में 6वें वार्षिक एशिया आर्थिक संवाद के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक लगातार नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इस महोत्सव का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
खजुराहो नृत्य समारोह में विश्व रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत 19 फरवरी को हुई थी और 20 फरवरी को 139 कलाकार लगातार नृत्य करते रहे। करीब 24 घंटे 9 मिनट की इस मैराथन नृत्य प्रस्तुति में कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी जैसे नृत्यों की प्रस्तुतियां शामिल थी। गिरीज बुक की टीम द्वारा इसे विश्व रिकॉर्ड घोषित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रमाण पत्र सौंपा गया। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 26 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केंद्र सरकार ने अचानक दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए 9वीं कक्षा से प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पिछले वर्ष संसद में ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि लोगों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी आज जेल परिसर में ही महाकुंभ स्नान करेंगे। इसके लिए जेल परिसर में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे कैदियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने का अवसर मिलेगा।
प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से कलश में जल लाकर जेलों में स्थापित कुंडों या टबों में डाला जाएगा, जिससे इच्छुक कैदी स्नान कर सकें। प्रदेश की सभी जेलों में संगम जल से स्नान और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश की जेलों में लगभग 90,000 कैदी हैं। लखनऊ रेंज के DIG कारागार डॉक्टर रामधनी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई महाकुंभ के पुण्य अवसर से लाभान्वित हो सके, चाहे वह जेल में ही क्यों न हो। कार्यक्रम का शुभारंभ आज लखनऊ स्थित आदर्श कारागार में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान करेंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से जेल में बंद कैदियों को आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून प्राप्त होगा। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर में भारी बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी और वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटक बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं।
राज्य की ऊंची चोटियों पर कल हुए हिमपात से ठंड बढ़ गई है और कई स्थानों पर सड़क मार्ग और विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बर्फबारी और बारिश से प्रदेश के किसान बेहद खुश हैं और उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद है। वहीं घूमने आए पर्यटकों ने हिमपात का खूब आनंद लिया। बर्फबारी के चलते चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग, खजियार डॉलोजी और चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
इस बीच जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कल शाम बनिहाल काजीगुंड खंड में बर्फबारी और रामबन और बनिहाल के बीच फिसलन के कारण बंद कर दिया गया है। रामसू बनिहाल और बनिहाल काजीगुंड सेक्टर में ताजा बर्फबारी और नाशरी बनिहाल सेक्टर में बारिश के कारण यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल दुबई में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तौहीद हृदय के शतक की बदौलत 228 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 47 ओवर में आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज पाकिस्तान के कराची में अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। इधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। ये मैच शाम 5:15 बजे से शुरू होगा। हॉकी में भुवनेश्वर में ही एक अन्य मैच में आज शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर ने कल मोहम्मदन एससी को 2-0 से हरा दिया। आज शिलांग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और बेंगलुरु के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद विशाल। दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण को आज के सभी अखबारों में सचित्र प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा राज। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने संभाली कमान। प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण न करें, OTT प्लेटफॉर्म दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है।
धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। कहा पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता विश्व के लिए महत्वपूर्ण। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले विधानसभा सत्र में CAG रिपोर्ट पेश करने का दिया आश्वासन। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।